الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کس ٹاپک پہ آج کل کلاس کر رہے ہیں؟ آواز بتائیں گے کیا پڑھتے ہیں ہم آج کل؟ کوئی اور بتائے گا چھوٹے بچوں میں سے؟ کون سی کلاس ہے؟ ساتھ بھائی بتائیں گے؟ آپ تو بڑے بھائی ہیں نا ہمارے، کوئی چھوٹے بھائی نہیں بتائیں گے؟ اچھا تو چلیں ساتھ بھائی بتا دیں. سیرت الصحابہ، اور سیرت الصحابہ میں سے کون سے والے صحابہ کو ہم اب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ہے نا؟ تو صحابہ کرام میں پھر مختلف کیا کہیں گے درجات بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام کا وہ کون سا والا درجہ، یا وہ کون سا والی کلاس کہلاتی ہے صحابہ کرام کی، جس کلاس میں سب سے ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹاپر کلاس صحابہ کرام کی. شیخین، ہاں ویسے ہے تو شیخین ہی والی کلاس، لیکن شیخین کی کلاس کو ہم تھوڑا سا زیادہ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، جو کہ خلفائے راشدین کی کلاس، ٹھیک ہے؟ جو چاروں خلفائے راشدین جو ہے، پھر شیخین بھی ان کے اندر ہی آ جاتے ہیں. شیخین سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ شیخین یعنی دو شیخ، ٹھیک ہے؟ تو خلفائے راشدین کی کلاس سب سے ٹاپ موسٹ کلاس ہے، اور ان کے بعد جو دوسری بگر کلاس بنتی ہے، اچھا آپ سے کچھ پوچھا نہیں تھا، عشرہ مبشرہ والی کلاس، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر کے اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. اچھا ان کے بعد تیسری کون سی والی کلاس بنتی ہے؟ اچھا شیخین جو ہیں وہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں. خلفائے راشدین وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا عشرہ مبشرہ کے بعد تیسری کون سی بڑی کلاس بنتی ہے؟ جی رحیم بھائی بتائیں گے.
بدر
بدری صحابہ کی کلاس، زبردست، ٹھیک ہے؟ بدری صحابہ، اچھا بدری صحابہ کے اندر عشرہ مبشرہ سارے کے سارے شامل ہیں سوائے ایک کے، وہ کون؟ لیکن وہ بھی شامل ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جو کہ فزیکلی شامل نہیں تھے لیکن اسپریچولی وہ بھی شامل تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بدری صحابی کا مقام دیا، کہ ان کو بھی بدر کے جو ہے نا وہ جو مال غنیمت تھا اس میں حصہ بنایا. کیوں ایسا کیا تھا نبی علیہ السلام نے؟ کہ حالانکہ وہ موجود ہی نہیں تھے بدر کے اندر، پھر بھی ان کو بدری صحابہ کا درجہ دے دیا. یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور بتائے. چلیں آپ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ وہ جو نہیں گئے تھے نا، وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا خواہش کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کس وجہ سے نہیں گئے تھے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یہاں پہ رہو مدینہ منورہ میں اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو. کون تھی ان کی بیوی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بیمار تھیں اور بہت زیادہ بیمار تھیں، انتقال کے قریب تھیں، ٹھیک ہے؟ تو حکم ماننے کے اوپر نبی علیہ السلام کا ان کو اس چیز کا مقام مل گیا جو کہ انہوں نے کری نہیں، بدری صحابی کا مقام مل گیا جو کہ سب سے افضل مقامات میں سے ایک مقام ہے. اچھا تو بدری صحابہ کے بعد چوتھی کلاس کون سی بنتی ہے؟ جی شاہ، بعثت رضوان والے صحابہ کی کلاس، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر کے 4,000 کے قریب صحابہ موجود تھے. اچھا تو ہم کون سی والی کلاس پڑھ رہے ہیں؟ ہم ابھی تک عشرہ مبشرہ والی کلاس کے اندر ہی ہیں، جن کے اندر ہم چھٹے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آخری بات ہم نے جو پڑھی تھی، وہ اگر کوئی ہمیں یاد دلا دے کہ کون سی بات تھی، کسی پہ نوٹس میں اگر نوٹڈ ہو. تو اب تو آپ لوگ ماشاء اللہ نوٹس بناتے ہوں تو اچھی کاز ہے نوٹس جی بنائیں گے.
اور نہیں کافر کی ڈرامے کی جو مہاجرین ہم نے انسان کو فوقیت ہے
مہاجرین کو انصار پر فوقیت ہے، مہاجرین کو انصار پر فوقیت ہے، یا मुजाहिदीन को कायदीन पे फोकियत है।
उसके
साबिकून अव्वलून में तो फिर ये वाले हजरत आ जाते हैं, लेकिन मुहाजरीन को अंसार पे फोकियत इस अंदाज से सहाबा कराम की जमात को ओवरऑल जब देखते हैं तो ऐसे नहीं बनता। ठीक है, तो वो इमामत के लिए कुरैश हैं और वो सब, वो फिर एक हर हर चीज़ का एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट जरा इस तरह से। अच्छा, तो आखिरी बात क्या पड़ी थी भाई? आज की क्लास उसी में निकल जाएगी।
तो मुसलमान
ये आखिरी क्लास की बातों में से एक बात तो थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी बात क्या थी? यहाँ पे किसी ने हाथ पाया? नहीं। अच्छा चले, आप बताइए। ज्यादा हो गई थी, किसमें ज्यादा हो गई थी? चले अब आगे बढ़ते हैं। तो गजवा हुनैन का वाकया पढ़ रहे थे कि उसके अंदर मुसलमानों की तादाद काफिरों से ज्यादा थी, तो उसकी वजह से दिल में ख्याल आ गया किसी के कि भाई आज तो ना हम अपनी तादाद की वजह से जीत जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला को इतनी सी भी बात सहाबे किराम की पसंद नहीं आई और फौरन जो है वो आजमाइश आ गई और बहुत मुश्किल हो गई थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए अपने आप को बचाना, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो तनहा रह गए थे और नबी अलैहिस्सलाम लोगों को बुलाना शुरू हो गए थे, बुला रहे थे कि आओ आओ। कैसे बुला रहे थे? माशाल्लाह, अना नबी ला कज़ब, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू हुए थे कि मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मैं नबी हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ठीक है, चले, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा क्यों कहा था वो भी हम पूछते हैं आपसे, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया। तो लेकिन कुरैश के लोग जो थे ना वहां पे, जो लोग मौजूद थे अरब के सारे लोग, सिर्फ कुरैश नहीं और तो पूरा एक्सटेंडेड अरब के लोग मौजूद थे ना, तो वो सब जो है वो हजरत अब्दुल मुतलिब को जानते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल मुतलिब के साथ जो है वो अपनी निस्बत बयान फरमाई, तो मैं उनका पोता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद एक वाकया यरमूक के जंग का लिखा हुआ है। ये यरमूक के जो मारका था, मारका यरमूक, ये किस जमाने में हुआ था, किसी को पता है किसके दौर में हुआ था जंग यरमूक?
अच्छा
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जमाने में हुआ था। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर मार्का था, रोमियों के खिलाफ हुआ था कि इराकियों के खिलाफ हुआ था। तो जंग यरमूक में ना ज़ुबैर अतान को किसी ने कहा कि आप जरा दुश्मन की फौज को चीर के तो दिखाएं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखाता हूं। तो उन्होंने अपना घोड़ा जो है वो दुश्मन की सफों में, यानी दुश्मन जो था ना काफिर थे, वो जिस तरह नमाज की सफें बनती है ना, तो जमाने में जंग के अंदर भी फौजें सफें बनाती थी, पहली सफ, फिर दूसरी सफ, फिर तीसरी सफ, फिर चौथी सफ। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो मुकाबला करते थे आगे आने वाले दुश्मन का। तो इन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया और एक सफ को चीरते हुए, यानी पहले सफ के लोगों को मारते हुए दूसरी सफ में गए, उनके लोगों को मारा, तीसरी सफ में गए उनके लोगों को मारा, चौथी सफ में गए उनको मारा, हत्ता कि बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे बहादुर थे, यानी अजीब लोग थे ना, यानी उधर से कोई तीर मार दे, उधर से कोई नेजा मार दे, किसी की तलवार लग जाए, कोई परवाह नहीं थी इन लोगों को। ठीक है, ये तो शहादत के लिए घर से निकलते थे और ये इरादा करके कि बस अब तो हम ऊपर जाएंगे, वापस जाने का इरादा नहीं होता था इन लोगों का, इसी वजह से ऐसे काम करते थे। अच्छा, तो वे पूरे आखिर तक पहुंच गए और बिलाखिर वहां से घूम करके वापस भी आ गए। इनको जख्म तो आया, एक दूसरा जख्म आया इनको गर्दन के ऊपर, एक जख्म इनको आया था बदर के मैदान में गर्दन के ऊपर, और दूसरा जख्म कहते हैं कि मुझे यरमूक की लड़ाई में लगा गहरा जख्म। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इनका इसी तरह जिहाद का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में ही मिस्र भी फतह हुआ था, मिस्र। ठीक है, तो जिसको आज इजिप्ट कहते हैं, मिस्र में एक शहर था जिसका नाम था फुस्तात, फुस्तात। ठीक है, तो के साथ फा सीन तो अलिफ तो, फुस्तात का मानी किसी को पता है? लफ्ज फुस्तात बड़ा मशहूर लफ्ज है आजकल, कोई इसका मानी बता सकता? खेमा। ठीक है, टेंट। ठीक है, वो हदीस हदीसे फुस्तात के नाम से बड़ी मशहूर है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब मेरी उम्मत दो फुस्तातों में बढ़ जाएगी, एक दो खेमों में बढ़ जाएगी, ठीक है। एक खेमा जो है, एक फुस्तात, फुस्तात खेमों को कहते हैं ना, तो एक खेमा जो है वो फुस्तातुल ईमान होगा, ला निफाक फीही, जिसके अंदर बिल्कुल भी निफाक वाले लोग नहीं होंगे, हिपोक्रेट्स बिल्कुल नहीं होंगे उस खेमे के अंदर, सिर्फ पक्के मोमिन होंगे उस खेमे के अंदर, ठीक है। और दूसरा खेमा जो मेरी उम्मत का बन जाएगा वो क्या होगा, फुस्तातुन निफाकी ला ईमान फीही, वो ऐसा खेमा होगा कि जिसके अंदर सिर्फ मुनाफिक लोग होंगे और कोई भी ईमान वाला उनके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि दो बड़े बड़े वो यहाँ पे बना रहे हैं ना मुकब, मुकब पता है किसी को, एक बहुत बड़ा सा कोई शहर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जो ऊंची नहीं होगी लेकिन चौड़ी होगी, बहुत बड़ी, ठीक है। तो इस तरह की बिल्डिंग में सारे लोग चले जाएंगे, ईमान वाले एक बिल्डिंग में चले जाएंगे, दूसरे बाकी निफाक वाले जो है वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे, नहीं इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि दो फिजिकल बिल्डिंग्स में उम्मत बढ़ जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि नबी फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर दो किस्म के लोग रह जाएंगे खाली, ठीक है। एक वो होंगे जो कि ईमान वाले होंगे, बिल्कुल भी नफाक उनके अंदर नहीं होगा, और दूसरे वो होंगे कि जो कि मुनाफिक होंगे, उनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। फिर फरमाया कि जब ये वक्त आ जाए ना तो फिर तुम दज्जाल का इंतजार करो, आज निकला या कल निकला, यानी बस एक दो दिन में दज्जाल निकल आएगा उसके बाद, ठीक है। क्या मतलब कि जब बिल्कुल 100% ये बाइफर्केशन हो जाएगी, ये डिविजन हो जाएगी, उसके फिर फौरन ही बाद दज्जाल जाहिर हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये दज्जाल है। जी
इसमें कहें कि तुम लोग देख लो कि ऐसा हो जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो ऐसा, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पक्के सच्चे हैं तो ये हो सकता है कि बहुत कम तादाद हो उनकी, क्या कुछ पता चलेगा कि इन लोगों में निफाक नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ऐसे दो लोग दो जमातें बन गई हैं कि एक निफाक नहीं है और ऐसा।
नबी अलैहिस्सलाम ने इत्तला दी है, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फरमाया ना कि फिर तुम इंतजार करो दज्जाल का कि अब निकला या कब निकला, अब निकला थे तब निकला, हम कहते हैं कराची में इस तरह, अब निकला कि तब निकला, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नजर आ जाएगा कि ये मोमिन है ये मुनाफिक है, ये मोमिन है ये मुनाफिक है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम दरअसल हमें इत्तला दे रहे हैं कि जब एक वक्त आएगा कि ऐसा हो जाएगा, पहली बात तो वो बता रहे हैं आपसे, समय बता रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा ना, बस उसके फौरन बाद ही दज्जाल का नुजूल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वी नीड टू फाइंड आउट कि अच्छा हो गया है कि नहीं हो गया, बैठे लोगों के कैसे चेक करेंगे, किसी के माथे पे के थोड़ी लिखा होता है कि मैं मोमिन हूं और ये मुनाफिक है और ये मुनाफिक, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। और लोगों के दिलों को तो हम खोल के देख ही नहीं सकते, क्योंकि निफाक का कैसे पता चलता है, निफाक का तो इंसान के दिल में निफाक होता है ना, और ईमान भी दिल में होता है, ऊपर से नजर नहीं आता ये चीज, ठीक है। इस वजह से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें नजर आएगा या हमें देखने की जरूरत है, बल्कि आप ने इतला दी है कि ऐसा होगा। अब मकसद क्या था इतला देने का, क्यों दी भाई इतला, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब होगा, तो फिर फायदा क्या बताने का, क्यों बताया फिर
अच्छा
हमें, सिर्फ इसलिए बताया कि हम अपनी फिक्र करें कि हम जो है वो निफाक वालों में तो नहीं जा रहे, ठीक है, क्या हमारा ईमान कायम है, मजबूत है, अपनी जगह पर है, या हमारा ईमान जो है वो मुनाफिकत से कन्वर्ट हो रहा है, इसकी फिक्र करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खबर दी है ताकि हम फिक्रमंद हो जाएं। हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी आर इन द राइट टेंट, और द टेंट वी लिव इन इज द राइट वन, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा जवाब सवाल किया आपने कि वी आर इन द राइट टेंट और द टेंट वी लिव इन इज द राइट वन, कैसे पता चलेगा, आप ही बताएंगे, या जिन्होंने सवाल किया वही बताएं, या जो सुन रहे हैं सवाल को बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही टेंट में हैं कि हम गलत टेंट में हैं। नबी के अहकाम फॉलो करें, कैसे पता चलेगा,
ना
अपना अकीदा चेक करने से पता चलेगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? इसका और भी ज्यादा आसान जवाब और सही जवाब ये है कि हमें इल्म हासिल करने से पता चले, हमें इल्म हासिल करने से कि भाई ईमान क्या होता है। और दूसरी चीज, ईमान क्या होता है, इसका इल्म हासिल करेंगे तब पता चलेगा ना कि हम ईमान के टेंट में हैं कि। और दूसरी चीज के
हाँ
निफाक क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि निफाक क्या होता है, कल का बयान सुना था किसी ने दिल के कानों से या सर के कानों से, तो कम से कम सुना। तो कल क्या बताया था कि इल्म हासिल करना, तो भाई मैं तो करता हूं, ठीक है सभी करते हैं। तो कल के बयान में क्या समझाया था वो, किसी को याद है? जी मोहम्मद,
करने का जो हमारा है तो तरीका है वो ये कि सोशल मीडिया शॉर्ट्स देखेंगे, सरंग क्लिप्स वगैरह सुन के वहां से इल्म हासिल करते हैं, जो वाकई के इल्म
सही
हासिल करते
सही, ये तरीके के बारे में बताया था, ठीक है। कि इल्म हासिल करने का तरीका ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया से जाके शॉर्ट क्लिप सुनना शुरू कर दें, चाहे हजरत जी के क्यों ना हो, चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के क्यों ना हो, ये तरीका नहीं है इल्म हासिल करने का, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा एक हायर इंटेलेक्चुअल लेवल के वो पूछा जाए कि इल्म हासिल करना क्या है और इल्म हासिल करना क्या नहीं है, तो क्या नहीं है का जवाब दें, जो कि कल समझाया था। इल्म हासिल करना क्या नहीं है?
Exemptions.
अजम्पशंस, माशाल्लाह, 100% परफेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये इतना अहम जवाब है कि मतलब मैं इससे ज्यादा इसको ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अजम्पशंस पे जिंदगी नहीं गुजारनी है, ठीक है। अजम्पशंस पे जिंदगी नहीं गुजारनी है, गुमान कर लिया बस ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ऐसे ही होगा, बस सबरे लोग कर रहे हैं ना इस वजह से ठीक होगा, ठीक है। या दाढ़ी वाले कर रहे हैं तो इस वजह से ठीक होगा। हजरत जी ने एक दफा मुझे फोन करके कहा था, दाढ़ी देख करके किसी के साथ बिजनेस ना करना, ठीक है। फोन करके हजरत जी, पाकिस्तान गए थे, अमेरिका से मूव हुए थे ना पाकिस्तान, तो हमें शौक हो रहा था बिजनेस करने का, बिजनेस करने करना, वरना कुछ आता नहीं था, ठीक है। हजरत जी कहते हैं, दाढ़ी देख के किसी के साथ बिजनेस ना करना, ठीक है। क्या मतलब कि दाढ़ी देख के ज्यूम क्या नेक होगा, है? नेक होगा क्योंकि दाढ़ी लगाई हुई है इसने, नहीं, दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है। दाढ़ी तो यहूदियों की भी होती है ना, दाढ़ी तो सिखों की भी होती है, दाढ़ी तो कोई भी उगा सकता है आजकल, तो वैसे ही बहुत आसान हो गया दाढ़ी उगाना, ठीक है। तो भाई चेक करना पड़ता है, इल्म हासिल करना पड़ता है, तहकीक करनी पड़ती है, ठीक है। इससे फिर पता चलता है क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो ये आपके सवाल का जवाब यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से वाले टेंट में हैं और क्या हम गलत टेंट में तो नहीं हैं। डोंट एज्यूम कि आपको पता है कि निफाक क्या चीज होती है, और डोंट एज्यूम कि आपको पता है कि ईमान क्या चीज होती है। फाइंड आउट, लर्न। और लर्न करने का तरीका क्या होता है कि अच्छी किताबों से, जो सही किताब है उनसे पढ़ना, और जो अल्लाह के वाकई नेक बंदे आपको नजर आ रहे हैं इल्म वाले, उनसे पूछना, उनसे सीखना। फसलु अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, ठीक है। तो फुस्तात से बात शुरू हुई थी कि एक शहर है मिस्र के अंदर, या उस जमाने में था इस नाम का, जिसका नाम था फुस्तात, ठीक है। खेमों का नाम रख दिया, तो उन्होंने वो तो शुरू में शायद उसके अंदर खेमे होते होंगे। अच्छा, वो फुस्तात जो शहर था ना, ये इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट्रेस था, गोया कि ये एक सरकारी किला था, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिशियल्स यहाँ पे रहते थे, ट्रेजरी वाले लोग रहते होंगे, खजाना वजाना उन्होंने रखा हुआ होगा अपने मिस्र का। तो बहुत अहम अहम सिटी था ये फुस्तात, ठीक है। तो इसके ना इन्होंने फोर्ट जो बनाया हुआ था, फोर्ट्रेस, वो भी बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ था, और उस फोर्ट्रेस के चारों तरफ इन्होंने, इन लोगों ने खंदक बनाई हुई थी, ठीक है। तो इतनी जबरदस्त किस्म की उस फोर्ट्रेस की प्रोटेक्शन थी कि खंदक था, खंदक थी, और फिर उसकी दीवारें भी बड़ी मजबूत थी। तो उमर बिन आस, अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक बहुत जलील कदर सहाबी हैं, तो उन्होंने ना उमर ताला से कहा कि आप ना मुझे 4,000 बंदे दे दें, मैं जाता हूं उसको फतह करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुसलमान उस वक्त एक्सपेंशन मोड में थे, हर जगह फतह फतुहात हो रही थी। तो उमर रतान ने उनको 4,000 बंदे दे करके भेज दिया, ठीक है। अब अमर अमर बिन आस रतान जो हैं उनको उमर रजताना उन्होंने 4,000 की फौज देकर के भेजा कि तुम जाके फुस्तात को फतह करो। अब जब ये फुस्तात पहुंचे ना, तो उनको पता चला कि यार ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, मुझे 4,000 से ज्यादा बंदे चाहिए होंगे इसको फतह करने के लिए, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है और इतनी खंदक बनी हुई है, और शायद खंदक में उन्होंने पानी भी डाला हुआ था, तो ये तो आसान काम नहीं है। तो इन्होंने फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा कि मुझे कुछ कुमक की जरूरत है, ठीक है, यानी इन्फोर्समेंट्स की, आप पीछे से और फौजी भी भेजें। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको 10,000 और फौज भेज दी, ठीक है, 10,000 और 4,000 जो पहले थे वो मिलकर के 14,000 हो गए। 14,000 भी बहुत कम लोग थे, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना एक और मजे का काम किया, उन्होंने 4 बंदे भी भेजे कि ये जो है ना ये सालार हैं, यानी ये फौज के लीडर्स हैं 4, और ये भी फरमाया कि ये 4 जो बंदे हैं ना इनमें से हर एक 1,000 के बराबर है, इनमें से हर एक 1,000 के बराबर है, ठीक है। तो गोया के मैंने तुम्हें 14,000 भेजे हैं, 10,000 नहीं भेजे हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें 14,000 बंदे भेजे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है ना ये 4 लोग कौन थे, एक तो इनमें हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, ठीक है, जो कि अशरफ मुबशरा साहबा और साबिकून अव्वलून में से थे, ठीक है। इनको लगता है मैं इधर बिठा दूं ज्यादा अच्छा हो जाएगा मुस्तफा भाई को, ताकि दोनों काम एक साथ ही हो जाए। आप इधर आ जाए, इस बहाने लोग हमें भी देखेंगे अच्छा, तो एक थे हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक थे हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, एक थे मिकदाद बिन अमर, और एक थे सलमा बिन मुखल्लद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 4 सहाबा थे, ये 4 हर एक जो है वो 1,000 के बराबर उमर फारूक के बराबर के मुताबिक था। अब जब ये लोग आए ना वहां पर, ठीक है, तो वहां पे जो कमांडर इन चीफ कौन थे, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ठीक है ना, जो के सहाबी रसूल भी थे और कमांडर इन चीफ भी थे। लेकिन जब ये 4 इनके पास पहुंचे, तो अमर बिन आस रतान, देखें क्या इन लोगों की अदब का मुकाम था, क्या इनकी तरबियत हुई थी, कि इन्होंने जब हजरत जुबैर बिन अवाम रतान को देखा ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप दर्जे में मुझसे फजीलत रखते हैं, आप लीडर बन जाए, अपनी लीडरशिप को छोड़ दिया और जुबैर बिन अवाम रतान को लीडरशिप की ऑफर कर दी कि आप लीडर बन जाए, ठीक है। तो जुबैर बिन अवाम रतान वाकई इनसे हर लिहाज से जो है वो बड़े थे, अशरफ मुबशरा में से थे, नबी अलैहिस्सलाम के करीबी तरीन रिश्तेदार भी थे और बेहतरीन कमांडर भी थे फौज के। तो बहरहाल इन्होंने फिर वहां पे मुहासरा तो कर लिया उस किले का, लेकिन वो किला जो था ना वो उन लोगों ने क्या किया था, दरवाजे बंद कर दिए थे और खाने पीने का सामान इतना सारा स्टोर कर लिया था कि उनको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। तो आराम से वो दरवाजे दरवाजे बंद करके वो अंदर बैठे रहे, हत्ता के 7 महीने गुजर गए। सोचें 7 महीने कितना लंबा टाइम होता है, और ये सहाबा जो है और अपने पूरे के पूरे लश्कर के साथ बाहर। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कहीं मैंने पढ़ा था कि उसी जमाने में जो है ना इन लोगों ने फिर अपना एक पैरेलल शहर बसा लिया था वहां पर मुसलमानों ने। वो शहर भी जो था ना वो भी फुस्तात ही पर मबनी था, यानी वो टेंट्स टेंट सिटी था एक बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को इतना लंबा सा वहां पे वेट करना पड़ा था, वेट करना पड़ा, तो जाहिर है भाई कैसे रहेंगे, पूरा एक शहर गोवा पे वहां पे बस गया था, जो कि वे बाद में भी चलता रहा था। अच्छा, तो जुबैर रतान जो है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन किला जो है फतेह ही नहीं होकर के दे रहा था। तो एक दिन ना जुबैर रतान उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आज मैं मुसलमानों पर फिदा होता हूं, मैं मुसलमानों पे आज कुर्बान होता हूं, ये जो है ना अकेले ही निकल पड़े और किसी ना किसी तरीके से छुप छुपा करके ये जो है वो लोगों की नजरों से बचते बचते ये बिल्कुल दीवार पे गए, दीवार तक पहुंच गए किले की, और वहां जो है ना जैसे रस्सी की सीढ़ियां होती थी, रस्सी की बनी हुई सीढ़ियां जिनको क्या आप यूं करके ऊपर फेंक सकते थे ऐसे करके, ठीक है ना, जो असल सीढ़ी होती है उसको तो लगाना, वो तो आप लेके कैसे आएंगे उसको इतना दूर तक। तो बहरहाल किसी तरह से उन्होंने रस्सी लगाई और ये ऊपर चढ़ गए दीवार के ऊपर, वहां पे जितने भी गार्ड्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ ये तनहा लड़ते रहे, हत्ता के सबको मार करके ये अंदर कूद गए किले के अंदर, ठीक है। अच्छा, 2-4 सहाबा जब इन्होंने देखा कि जुबैर बिन अवाम इस तरह से तनहा ऊपर चढ़ गए और ऐसे लड़ रहे हैं, तो वो 2-4 और भी आ गए, ठीक है, तो वो भी लड़ने लगे, हत्ता कि ये सब के सब जो है वो शहर के अंदर उतर गए और अंदर से जा करके उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब मुसलमान तो पहले ही इंतजार में बैठे हुए थे, दरवाजा खोले हम अंदर जाएं, तो फिर सारे के सारे अंदर आए और ये शहर इस तरह से फतह हो गया। इस शहर में जो इनका अमीर था उसका नाम वही था मकूकस। मकूकस जो मिस्र का यानी बादशाह होता था, मकूकस बादशाह, याद है क्या? जब नबी अलैहिस्सलाम ने खतूत लिखे थे ना बादशाहों को, तो उनमें से एक मकूकस को भी खत लिखा था कि तुम मुसलमान हो जाओ तो फिर तुम भी जहन्नम से बच जाओगे, तुम्हारे लोग भी तुम जहन्नम से बच जाएंगे। बहरहाल तो मकूकस जो है वो बिलाखिर उसने हथियार डाल दिए और उसने कहा कि भाई मेरे साथ तुम एग्रीमेंट कर लो, तो सुलह वुलह हो गई इस तरह से। अच्छा, तो इस तरह से फिर ये जो फुस्तात की फतह थी ना, ये कहा कहते हैं लोग कि ये हजरत जुबैर का गोया के एक इंडिविजुअल फीट था, ये इसकी तनहा तने तनहा गोया के कामयाबी हासिल करी थी। जी
अच्छा
नहीं, जुबैर जो है वो बहुत लंबे अरसे तक मजीद चलते रहे थे और आगे हम उनकी शहादत का ही वाकया पढ़ने वाले हैं। ये आखिरी आखिरी टॉपिक है इनके जिंदगी का। तो इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है जुबैर की जिंदगी का वो है जंगे जमल। ठीक है, जंगे जमल, द बैटल ऑफ द कैमल। सही है, तो जंगे जमल हमने, अच्छा ये नहीं पूछते कि क्या था, बल्कि ये पूछते हैं कि हमने कहाँ पढ़ी थी जंगे जमल के बारे में बातें इससे पहले। और भी तो बताए, कुछ संजीदा तबीयत के लोग होते हैं जिनको पता भी होता है ना, तो वो नहीं बताते, यार हम ये बच्चों वाला काम क्यों करें। वो ज्यादा संजीदा लोग होते हैं, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो प्लीज हमारी संजीदगी को कम करें। ये पता है कि उनको पता तो है लेकिन बताते नहीं। कौन बताएगा, आप सब लोग तो बताते आ रहे हैं। बताएंगे ऑनलाइन में से? हाँ, इन्होंने ऑनलाइन जवाब दे दिया है के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। ऑनलाइन वाले भी जरा ज्यादा संजीदा लोग होते हैं, वो भी जवाब नहीं देते। इतने अच्छा उन्होंने जवाब दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह के जमा के किस्से के अंदर हमने जंगे जमल का वाक्य पढ़ा था कि जब अली रज़ी अल्लाह खलीफा बने थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद। ठीक है, तो उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत जिन लोगों ने करी थी तो वो गायब हो गए थे सारे के सारे। ठीक है, और इतना फसाद और इतना फितना फैल गया था कि उन लोगों को पकड़ना ही मुश्किल हो रहा था, मुमकिन ही नहीं हो रहा था बल्कि उनको पकड़ना ना। ठीक है, तो उस वक्त जब उस्मान रतान शहीद हुए थे मदीना तैयबा के अंदर, उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अनहा कहाँ पर थी? वो हज पे गई हुई थी। सॉरी, अगर आप बताना चाह रहे थे, वो हज पे गई हुई थी। ठीक है, तो उनको फिर इतना मिली जब वो मक्का मुकरमा के अंदर ही थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत हो गई है और उनके जो है ना वो कातिल फरार हो गए हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा ने वहां पे जो मुसलमान थे उनको फिर ये पैगाम भिजवाया कि ये जो फितना जिसकी वजह से उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत हुई है ना, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इसको ना हमें रोकने की जरूरत है। तो हम जो है ना वो उनके कातिलों के गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो हम मदीना मुनव्वरा में आएंगे और बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, आयशा सिद्दीका तान के साथ फिर और लोग आकर के मिल गए, जिनमें सबसे जो सीनियर मोस्ट सहाबा थे वो हजरत जुबैर रज़ी तान खुद थे और हजरत तलहा रज़ी तान थे। ये दोनों मदीना मुनव्वरा से हजरत अली रज़ी तान से इजाजत दे करके कभी हमें इजाजत दें, हम जाना चाहते हैं, रज़ी तान इजाजत दे दी, उनको क्या बता के आगे क्या होने वाला है। तो ये दोनों हजरात जो हैं वो मक्का मुकरमा आ गए और आयशा सिद्दीक़ा तआला के पास आए। उन्होंने भी आयशा सिद्दीक़ा तआला को यही खबरें दी। आयशा सिद्दीक़ा तआला ने फरमाया कि हाँ ठीक है, हम अब जो है ना वो उस्मान रज़ी अल्लाह के कातिलों के गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं और उनके साथ बदला लेने का मुतालबा करते हैं। और भी बहुत सारे लोग मिल गए उनके साथ। जी
तो सहाबा ने सबसे पहले लीडर चुना था, तो यहाँ पे ऐसा किया गया सबसे पहले लीडर चुनना
लीडर चुन लिया था। मदीना मुनव्वरा में जो लोग मौजूद थे ना, उन्होंने सबसे पहले हजरत अली रतान को चुन लिया था, उनसे बैत कर ली थी। ठीक है, इवन तलहा रतान और जुबैर रतान उन्होंने भी बैत कर ली थी, जैसा इकताओं में लिखा है, उन्होंने भी बैत कर ली थी। ठीक है, तो लीडर तो वाकई चुन लिया गया था, लेकिन ये जो मसला था ना कि ये बलवाई जो है वो सारे के सारे गायब हो गए हैं और फसाद बढ़ रहा है, ये तो एक अलग पे, ये तो एक पैरेलल में एक मसला चल रहा था। नॉट द चॉइस ऑफ लीडरशिप वॉज नॉट द इशू। जी
देखो की बात नहीं होनी कि कोई उन्होंने तो कहा था कि पहले खिलाफत पाया लेकिन ठीक कर रहा हूँ वो सेटल हो तो फिर उन्होंने इतनी मुतालबा किया।
उन्होंने क्यों मुतालबा किया? देखिए, सिचुएशन जो होती है ना वो डेवलप होती हैं, और हमारा दीन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से इज्तेहाद वाला दीन है ना। ठीक है, इज्तेहाद का दरवाजा दीन में इसी वजह से तो खुला होता है कि जो फुकहा होते हैं वो फिर नई सिचुएशन के मुताबिक फिर एक नया हुक्म ड्राइव करते हैं, इसी को तो इज्तेहाद करना कहा जाता है। तो अब ये जो सहाबा थे जिनमें के हजरत आयशा सिद्दीकर रहता, ये एक मुज्तहिदा सहाबा थी, सहाबिया थी। ठीक है, तो इन्होंने उस वाली सिचुएशन के अंदर इज्तेहाद किया कि इस वक्त जो है ना वो उस्मान के कातिलों, रजतारन के कातिलों को गिरफ्तार करना और इस फितने को कर्ब करना जो है ना, ये इस वक्त इंतहाई अहम चीज है, वरना जो है वो लीडरशिप का जो तकरूरी है वो भी फायदा मंद नहीं होगी और ये फितना जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये उनका इश्तेहाद था और ये अहल थे इश्तेहाद करने के, ये लोग जुबैर रतान, तलहा रतान, हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा। ठीक है, तो अब ये इख्तिलाफ हो गया, अली रतान का अपना इश्तेहाद था कि नहीं भी बाद
भाई
में करूंगा,
हाकिम भाई
उनका
कहाँ है?
इश्तेहाद कि नहीं मैं अभी अभी हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो बहरहाल अब ये आयशा सिद्दीक रतान जो है वो जुबैर बिन अवाम और तलहा रतान के साथ और बाकी जो लोग इनके साथ आकर के मिल गए थे, ये सब के सब जो है वहां से निकल करके मक्का मुकरमा से ये बसरा की तरफ पहुंचे। ठीक है, बसरा एक बहुत ही अहम शहर बन चुका था उस वक्त, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी या मिलिट्री कैंप था ना, वो बसरा ही था। ठीक है, तो अब ये लोग बसरा पहुंचे, अली रतान को खबर मिली कि भाई ये लोग बसरा पहुंच रहे हैं, तो अली रतान ने भी फैसला किया कि मैं भी अपने साथियों को लेकर के बसरा पहुंचूंगा, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक जिनको के मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद सहाबा ने अमीर मोमिनीन चुन लिया था, अमीर मोमिनीन चुन लिया था, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इज्तिहाद था कि भाई ये जो ये लोग कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट राइट। ठीक है भाई, मुझे जब अमीर चुन लिया गया है तो अब मेरी मानो। ठीक है, उस्मान रतान के कातिलों को मैं बाद में गिरफ्तार करूंगा जब ये फितना जो है वो कुछ सेटल होगा। तो अब इन लोगों का इस तरीके से बैत ना करना, ये उनके नजदीक ये भी एक फितना था, ये भी एक जो है मसला था। तो उस मसले को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए अली रतान भी अपनी फौज लेकर के बसरा पहुंचे। ठीक है, अब जब ये दोनों फौजें वहां पहुंच गई ना, तो फिर दोनों तरफ सहाबा थे, दोनों तरफ ईमान वाले थे, तो अब इन दोनों के दरमियान बाकायदा मुजाकरात शुरू हो गए, बातचीत शुरू हो गई कि भाई दिस इज गेटिंग लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल, हमें जो है ना वो इसको खत्म करना है, बातचीत के जरिए से खत्म करना है। ठीक है, तो बातचीत होती रही, लेकिन टाइम जो है वो दिन का खत्म हो गया, रात हो गई, और उस जमाने में आपको पता है कि आर्टिफिशियल लाइटिंग वगैरह तो कुछ नहीं होती थी, जब रात होती थी तो लोग फिर अपना खाना पीना करके उसके बाद इशा विशा पढ़ के सो जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जी बाकी हम डिस्कशन जो है ना वो अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों लोग जो है वो अपने अपने कैंप्स में पहुंच गए। अब जो जो मुनाफिकीन थे और जो वो बलवाई किस्म के जो लोग थे जिन्होंने उस्मान रतान के घर का मुहासरा किया था और उनको शहीद करने में भी वो लोग शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग आपस में भाई भाई फिर से बन गए, दोस्ती वोस्ती फिर से हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर जो है ना सारी इन्वेस्टिगेशंस खुल जाएंगी, उस्मान रतान के कातिलों की जो तलाश है वो शुरू हो जाएगी, और यकीनन फिर उसके बाद हम लोग पकड़ लिए जाएंगे, और जब पकड़ लिए जाएंगे तो फिर जाहिर है खलीफा सोम की को शहीद करने वाले और ये सारा फितना करने वाले, हमें तो फिर कतल ही कर दिया जाएगा ना। उन्होंने कहा कि भाई ये दोस्ती हमने नहीं होने देनी है, किसी सूरत हमने ये दोस्ती नहीं होने दी है देनी है। ठीक है, तो उनमें कुछ मुसलमान भी थे जो कि बहुत ही गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुके थे, यानी बलवाई और फसादी हो चुके थे, उनके अंदर वो यहूदी भी थे जो कि अब्दुल्ला बिन सबा और उसके साथी लोग थे, वो भी उनके अंदर मौजूद थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना आयशा सिद्दीका रतान के फौज के ऊपर रात की तारीकी में हमला कर दिया। ठीक है, वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे कि भाई हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, तो जाहिर है उस वक्त एक ही ओपोनेंट वहां पे मौजूद था ना, जो खैबर अलीरतान की फौज थी। तो ये लोग ये समझे कि अलीरतान की फौज वालों ने हम पर हमला कर दिया, हालांकि उन लोगों ने हमला नहीं किया था। तो इन लोगों ने फिर काउंटर अटैक करना शुरू किया, यानी डिफेंड करना शुरू किया अपने आप को। उधर से हमला हुआ, इधर से। अब जब काउंटर अटैक हुआ तो फिर दोनों फौजों के दरमियान उसी वक्त जो है ना, फिर ये सारी की सारी लड़ाई लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, इसी लड़ाई के अंदर जो है फिर बहुत ज्यादा मुसलमानों को नुकसान हुआ। लेकिन फिर इसमें वो वाकया भी हुआ जो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि अली रज़ा तान जो हैं, वो जुबैर रतान को उन्होंने देखा तो वो अपने घोड़े को लेकर के जुबैर रतान के करीब गए और उन्होंने उनसे बात शुरू करी कि जुबैर, याद है तुम्हें वो दिन कि जब एक दफा मैं और तुम हाथों में हाथ डाले जा रहे थे, राइट? तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें देख करके फरमाया था कि तुम दोनों को आपस में बड़ी मोहब्बत है, कि इस तरह से हाथ में हाथ डाल करके तुम लोग जा रहे हो। तो जुबैर, तुमने कहा था कि हाँ मुझे अली से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने जुबैर तुमसे ये कहा था कि जुबैर एक दिन आएगा जब तुम अली से लड़ोगे, लेकिन अली उस वक्त हक पर होगा, अली उस पर उस वक्त हक पर होंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। ठीक है, तो जब अली रतानों ने ये बात जुबैर रतानों को याद दिलाई तो जुबैर रतानों को याद आ गई। ठीक है, और जैसे ही ये बात याद आई वैसे ही उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, यानी आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस फाइट एनी मोर। उन्होंने कुछ लोगों को भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो जो एक कमोशन होता है ना लड़ाई के अंदर, इधर से तीर आ रहे हैं, इधर से ये सब हो रहा है, लोगों की बात समझ में नहीं आई, किसी ने इनकी बात नहीं मानी सिवाय हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तलहा जतान ने भी इनको देखा कि ये जा रहे हैं, तलहा तान भी वहां से निकल गए। ठीक है, अब सोचे जरा इस बात को। ठीक है, सोचें कि नंबर वन नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ठीक है, कितनी इन लोगों के दिलों के अंदर पक्की थी कि किस सिचुएशन में हैं ये लोग, राइट? कित लड़ाई हो रही है, मैदान जंग में है, और इनका इतना, यानी किस वजह से थी मैदान जंग के अंदर, क्योंकि दे बिलीव कि ये हक पर हैं और इनको इस बात का यकीन था कि उस्मान रज़तान के कातिलों को पकड़ना इस वक्त मुसलमान उम्मत के लिए बहुत जरूरी है, राइट? मुसलमान उम्मत जो है वो फितनों का शिकार हो जाएगी अगर हमने उस्मान रज़तान के कातिलों को गिरफ्तार नहीं करवाया। तो ये कोई इसलिए तो नहीं लड़ रहे थे कि मुझे हुकूमत क्यों नहीं मिली, है मुझे क्यों हटा दिया, या क्या था वो पता नहीं, होती थी इस तरह की,
क्यों निकाला?
मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं बनाया, ये तो चक्कर नहीं थे ना यहाँ पे सारे के सारे। क्या नीयत थी? 100% इखलास, अल्लाह की खातिर, मुसलमानों की खातिर, इस्लाम की खातिर। ठीक है, इनकी अकल ये कह रही थी कि इस वक्त तो स्टैंड लेना ही अहम चीज है। ठीक है, और सही बात है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की बात उनको याद आ गई, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपनी सारी अकल, अपनी सारी समझ, अपना सारा इज्तिहाद। क्या था वो इज्तिहाद? था इनका कि इस वक्त जो है वो ये चीज जरूरी है, अपना इज्तिहाद साइड पे रख दिया, बिल्कुल उसको अबैंडन कर दिया। ठीक है, और उसी वक्त वहां से बाहर निकल गए। ठीक है, अब जब बाहर निकले तो आगे जाकर के ना एक शख्स था अमर बिन जरमूज, वो बदबخت आया। उस वक्त तक ये लेट गए थे और आराम फरमा रहे थे किसी जगह पे जा करके। तो ये अमर बिन जरमूज आया और उसने हजरत जुबैर रज़ान को कत्ल कर दिया। ठीक है, फिर ये जुबैर रज़ान का बाकायदा सर काट करके ये हजरत अली रज़ान के पास लेकर के आया, समझते हुए कि ये तो अली रज़ान के दुश्मन थे, अली रज़ान से लड़ने के लिए आए थे, अली रज़ान बड़े खुश होंगे और मुझे बड़ा इनाम देंगे कि मैं इनको जो है ना वो लेकर के आया हूँ। इस तरह से अली रज़ान ने फरमाया तुम जहन्नुमी हो, इसलिए कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि जो जुबैर को कत्ल करेगा वो जहन्नुमी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी शहादत हुई। और इसमें एक और भी बात याद रखने की या समझने की यह है कि देखें कितने अच्छे लोग थे, कितने बासलाहियत लोग थे, राइट? जुबैर बिन अवाम रतान, तलहा रजी अल्लाह तआला अन, है ना, अशरा मुबशरा थे भाई, मामूली नेक आदमी नहीं थे, अशरा मुबशरा थे। लेकिन जब इतना वक्त गुजरा तो इवन ये भी जो है नबी अलैहिस्सलाम की ये बात भूल गए थे, इनके जहन से निकल गई थी ये वाली बात। ठीक है, तो जब जमाना गुजरता है ना, अच्छा इन्होंने कोई किसी, ये नहीं है कि नाउज बिल्ला कोई गलत हदीस रिवायत कर दी, ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अली रतान को ये बात याद थी, उन्होंने हदीस बयान करी है, जुबैर रतान ने तो कोई थोड़ी हदीस बयान करी है कि कोई नाउज बिल्ला झूठी और गलत हदीस बयान कर दी, लेकिन जहन से चीजें जो है ना वो इंसानों के ये महव हो जाती हैं, ये निकल जाती हैं इन द मिड ऑफ द एक्शन, ठीक है। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में बात फरमाई थी ना, उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, 2 साल 2 महीने, जिसके अंदर कितनी लड़ाइयां हुई, यहां पे जो है मुसैलमा कजाब से लड़ने के लिए ये सहाबा आ रहे हैं, कहीं पे मानीने जकात से लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हुए अबू बकर सिद्दीक के जमाने में। फिर उमर फारूक का जमाना आया, उसके अंदर तो हर जगह ही जो है वो लड़ाइयां हो रही हैं, कहीं जुबैर जा रहे हैं, कहीं जो है वो तलहा जातान जा रहे हैं, कहीं पे ये फतह हो रही है, कहीं पे ये हो रहा है, कि जंग यरमूक हो रही है, जंग कादसिया हो रही है, मिस्र के अंदर जंगें हो रही हैं, इतना लंबा वक्त गुजरा। फिर उस्मानी गजातान का वक्त आया, उसके अंदर भी जो है वो 12 साल मजीद फतुहात भी हो रही हैं, फिर फतवे वो ये बलवे भी हो रहे हैं, फसाद भी हो रहे हैं, इतना वक्त गुजरा। अब जो है वो अली रतान का जमाना आया है, इतने लंबे अरसे के अंदर इनके जहन से ये बात महव हो गई, यानी निकल गई जहन से ये बात। हालांकि बात कितनी अहम थी, नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात थी, लेकिन निकल गई। तो इंसानों के साथ जो है ना वो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये कोई भी नहीं होता कि वो इंसान जो है कोई उसकी तकवा के अंदर कोई फॉल्ट आ गई, कोई कम जो है वो नेक बन गया, अगर वो कोई बात भूल गया, भूलने से इंसान की नेकी में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें भी अच्छे अच्छे नेक लोग इंसान भी भूल जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो जुबैर बिन अवाम रतान जो है वो इस तरीके से शहीद हो गए। जुबैर रतान को खिराज अकीदत के ऊपर हजरत ने फिर यहाँ पे ये अशार भी लिखे हैं, वो भी बस पढ़ के आपको हम छुट्टी देते हैं, कि शायर ने कहा कि तेरी नजरों के मैखाने नबी समझे नबी जाने, तेरी नजरों के मैखाने नबी समझे नबी जाने, उठा लेते हैं वो कुदसी छलकते हैं जो पैमाने। तेरी इतना मुश्किल है, मैं क्या क्या सुनूंगा, काफी लंबे से हैं, तो इस पर पढ़ देते हैं। तेरी खुशबू से दामन को चले आते हैं महकाने, वो है तेरी यादों से कई आबाद वीराने, करोड़ों तेरे आशिक हैं करोड़ों तेरे दीवाने, तेरी मैं से छलकते हैं दिलों के सारे मैखाने, तेरी मरकत पे आते हैं फरिश्ते फूल बरसाने, मेरी आंखें हैं दीवानी तेरे हैं नैन मस्ताने, जो तुझ से ला ताल्लुक हैं वो दिल हैं गोया वीराने, जो तुझ से ला ताल्लुक हैं वो दिल हैं गोया वीराने, फरिश्ते कितने आए थे तेरी मियत को दफनाने, खुशी से हूरें आई थीं तेरी जुल्फों को सुलझाने, ख्याल आया है फिर तेरा मेरे इस दिल को बहलाने, तेरी खातिर ही तोड़े हैं तमन्नाओं के पैमाने, छलकते हैं तेरी खातिर मेरी दो नैन मस्ताने, इन्हें फिर आके भर दीजिए है खाली दिल के पैमाने, तेरा आशिक समझते हैं मुझे कुछ लोग अनजाने, भरे रहते हैं यादों से तेरी खुशबू के पैमाने, तेरी यादों से रहते हैं मेरे आबाद वीराने, मेरे हर दुख को तू समझे मेरे हर दुख को तू जाने, मेरी ख्वाहिश के महशर में मेरा चेहरा तू पहचाने। यानी बस मोहब्बत वाले अशार हैं, वरना बाकी साहब के जो अशार हमने पढ़े थे, अंजुम नियाज़ी साहब के थे या किसी और के लिखे हुए, वो उनकी जिंदगी के किसी वाकये से जबरदस्त उन्होंने अशार के अंदर पहनाया हुआ था ना, ठीक है, पिरोया हुआ था अशार के अंदर, इसमें ऐसा कोई वाकया नहीं लिखा, बस उनकी मोहब्बत, उनकी खूबसूरती, उनकी यादें, उनके अपने ताल्लुक उनके साथ, बस सारा का सारा इसी तरीके से उन्होंने इतने सारे शेर लिख मारे माशाल्लाह। मेरी ये तमन्ना है कि महशर के दिन आप मुझे पहचाने और मुझे आपकी शफाअत नसीब हो और आपके कदमों में अल्लाह के सामने पेश होना नसीब हो। अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों के साथ सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की जुबान फैज तर्जुमान से जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी थी। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देते हैं।